نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور کیا بتلائے آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح الامین اس میں رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کا فیصلہ لے کر. سلامتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک. سورت القدر ترتیب میں 97 نمبر کی سورت ہے. بچپن سے ہم یہ سورت پڑھتے اور پڑھاتے بھی آئے اور بہت ساروں کو یاد بھی ہے. اس سورت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور آج خاص طور پہ جب ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کی جاتی گھڑیوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. آخری عشرہ بالکل انہی دنوں کی طرح ہے کہ جب ایک بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ میں آئی ہو اور اب وہ جانے والی ہے اور آپ ہمیشہ کی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سال بھی رمضان سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکی. اور یہ سوچ اکثر ہی ساتھیوں کو ان دنوں میں ہوتی ہے کہ ہم اس سال بھی رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کو ایک گمان تھا کہ ہم تو بعد میں آنے والی امت ہیں اور ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں, تو کیا ہم لوگ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی نیکیاں کر پائیں گے جو پہلے لمبی عمریں پانے والے کر گئے. ان کا سوال کتنا حسین تھا, ہم نے تو کبھی شاید اس پہ سوچا بھی نہ ہو. تو ایک سوال جو اس صورت کی بنیاد بنا اور وہ کیا تھا کہ ہماری تو عمریں بہت چھوٹی سی ہیں, ہم تو جتنی بھی نیکیاں کریں گے لیکن ان لوگوں کی عمروں کے مطابق تو نہیں ہوں گی کہ جن کو اللہ نے سو سو سال اور کئی سو سال کی عمریں دیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خوشخبری سنا دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے اس بات میں آنے والی امت جس کی شان تو بہت ہے لیکن ان کی عمریں بہت مختصر ہیں ایک ایسی رات دے دی ہر سال میں ایک بار کہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو اس کی وہ عبادت ہزار مہینوں, اگر آپ ہزار مہینے کو ضرب لگا کر دیکھیے تو یہ کئی سال تقریباً 86 ایئرس کے برابر بن جاتا ہے. یعنی اس ایک رات میں جس کو عبادت کا موقع مل گیا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کمی کو دور کرے گا. تو جس کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی تک رمضان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا تو ان آخری 10 دنوں کو اپنے لیے خوب محنت کرنے کا ذریعہ بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ ہی بہت محنت کرتے تھے لیکن جب آخری عشرہ آتا تو جو روایت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ کمر کس لیتے تھے اور اپنی ازواج کو بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی ان حجرے والیوں کو کہے, اپنی بیٹیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو پکار کر کہا کرتے تھے کہ عمل کر لو, کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ان آخری 10 دنوں کو ہم کس طرح سے گزاریں. ایک تو اس کا بہت ہی خوبصورت جو مسنون طریقہ ہے وہ اعتکاف کا ہے. ایک ہے مسنون اعتکاف, دو شرطیں اس کی رکھ لیں, وہ رمضان میں ہی ہوتا ہے, 10 دن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ 20 اور 21 کے بٹوین نائٹ میں اپنی اعتکاف کا پہ داخل ہوتے ہیں اور چاند دیکھ کر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مسنون اعتکاف, یہ سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے. اس کی شرط مسجد ہے, کوئی مرد کرے یا عورت, اس کے بہت سارے دلائل ہیں, ضرورت نہیں اس وقت بات کرنے کی. انتم عاکفون فی المساجد, تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. اللہ کے نبی خود بھی اعتکاف بیٹھتے, اپنی بیویوں کو بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھنے کا حکم دیتے اور آپ کی بیویوں کے حجرے لگتے تھے, حالانکہ ان کے گھر بھی ساتھ ہی تھے. یہ نہیں کہا کہ اپنا حجرہ تمہارا اندر ہی ہے, نہیں, مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتی تھی. پھر ایک دفعہ ایک عورت جو استخاضا میں تھی, یعنی ایسا بلڈ جو پیریڈس کے علاوہ آتا ہے, تو اس نے بھی جب پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اعتکاف بیٹھوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بیماری ہے کوئی بات نہیں. آپ نے اس کو بھی یہ بات نہیں کہی کہ تم پھر اپنے گھر ہی بیٹھ لو, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا مسنون اعتکاف, ہم نے تو کسی کو نہیں بتانا نا. دوسرا ہے عینی اعتکاف, ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں, دو دن کے لیے بیٹھے, تین دن کے لیے بیٹھ جائیں, इस पे ज़ाहिर है कि पाबंदियाँ इतनी सख्त नहीं होंगी। आप वैसे कोशिश कीजिए कि हमारी ज़ुबान से गलत बात निकले ही ना, हम अच्छा बोलें। तो जो बहनें बैठ चुकी हैं वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम अपने आप को एक ऐसे मोड में ला रहे हैं, लेकिन अगर मसनून एतकाफ है वो मस्जिद में ही होगा और वो रमज़ान के आखिरी 10 दिन का होता है। और इस साल चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मस्जिद बंद हैं, तो हमारे वो ब्रदर्स जो हर साल या अमूमन एतकाफ पे बैठते थे, इस साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक कि आम दिनों में इंसान जो नेकी करता है फिर किसी मजबूरी की वजह से वो नेकी ना कर सके, तो उसके तहत अल्लाह ताला उसको उसका भी अजर देते हैं। तो बास लोग कहते हैं कि मर्द हजरात चूँकि इस साल मस्जिदों में नहीं कर सकते तो घरों में कर लें। तो फिर ये तो कुछ इसी किस्म का सवाल बन गया कि अगर हज भी ना हो सका तो क्या लोग अपने अपने मुल्कों में या अपने अपने शहरों में हज करेंगे? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुछ इबादात को कुछ खास जगहों के साथ लगा दिया। बहुत सारी इबादात आप और मैं हर जगह कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, पूरी की पूरी ज़मीन है यानी नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं, सदका खैरात भी हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी इबादत के साथ जगह की और वक्त और मुकाम मौका दिन की तख़सीस हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला इस साल हमारे ब्रदर्स नहीं भी एतकाफ़ बैठ सकेंगे, लेकिन उनके दिल में तड़प है, दर्द है, तकलीफ़ है। और हमारे वो भाई भी जो कभी बैठते ही नहीं थे, उनको गिल्ट हो रहा है कि कभी हम बैठते और इस साल तो मौका नहीं मिला, तो वो नियत कर लें कि अगले साल इंशाल्लाह ताला जो ही मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे। ये तो है एक एतकाफ़ का मसला। जब मर्दों के लिए ये हुक्म है तो औरतों के लिए तो बदरजाए उत्तम अल्लाह ताला ने नेकियों को बहुत आसान रखा है। औरत अपनी ज़ात के एतबार से कमज़ोर भी है और पूरे घर को साथ लेकर चल रही होती है। तो आप मैं किसी भी वक्त नेकी की नीयत से जम के बैठ जाएं, क्योंकि लफ्ज़ एतकाफ़ का मानी होता है जम के बैठ जाना। ऐसी कैफियत हो जाए कि आपका ध्यान बिल्कुल इबादत में चला जाए। और किसी की बात दोहरा देती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब हम ये पढ़ते थे कि सहाबे कुराम सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे या इबादत में गुजारते थे तो उनको वक्त का एहसास नहीं होता था, तो मैं ये बात सुनकर हैरत होती थी। लेकिन अब जब किसी को उसके मनपसंद फ़ोन के साथ बैठे देखें, किसी भी गैजेट किसी भी सोशल मीडिया पे वो एक दफ़ा एंटर हो जाए तो कई घंटे का एहसास ना हो, तो हमें पता लग जाता है कि वाकई फिर उनको भी एहसास नहीं होता होगा। आप अपनी पसंद की किसी फेसबुक को खोल लें, किसी गैजेट में हो, आप किसी भी मीडियम पे जाएं और वहाँ अपने दोस्तों और साथियों से बातचीत करें, जिस तरह वहाँ वक्त का पता नहीं चलता, इसी तरह एक सच्चे मोमिन को इबादत के दौरान या दीन के किसी काम के दौरान वक्त का पता नहीं चलता। तो लिहाजा आपके मेरे लिए तो बहुत ही गुंजाइश है। आप दिन का 1 घंटा कोई वक्त कोई जगह जब चाहें मुंतखब कीजिए कि अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ और इंशाल्लाह मैं इसे 1 घंटे में और कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं मसलन कुरान पढ़ूँगी, या अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं ले रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज है, वो आपको मुझे अजर दे सकता है। दूसरी बात यह है कि अब रमज़ान में हम इन 10 दिनों में क्या करें। तो पहली तो बात है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक दें। जब तक हमारा जहन किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता हम तब तक वो काम कर नहीं पाते। नियत भी कीजिए, आज अगर कोई पाबंदी उठती है हम अगले दिन वहाँ मस्जिद में पहुँच जाएंगे, तो ये भी इंशाल्लाह उसके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरी बात देखिए कि जब भी कोई काम करना होता है ना, तो उससे पहले ये चेक कीजिए कि जो काम मैं करूँगी कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसके कबूलियत के रास्ते में रुकावट बने। बस आप देखिए कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाकर किसी ऐसी दोस्त के घर भेजें जिससे आजकल नाराज़गी चल रही है, तो हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत मज़े का देखने में अच्छा लजीज खाना भी कबूल ना करे, वापस भेज दे कि नहीं खाने को क्या करना है, मेरी तो आपसे बातचीत ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला किसी भी ऐसी चीज़ में बिगड़ा हो जिसमें कोई हराम काम आ सकता है, अल्लाह की बहुत वाज़े नाफरमानी हो, तो जब हम अल्लाह को किसी वजह से नाराज़ कर चुके हों तो फिर याद रखिए कि हमारी नवाफिल इबादात की भी कबूलियत नहीं होती। तो लिहाजा इसके लिए अब ये नहीं है कि नवाफिल नहीं करने या ऐसी इबादात का अहतमाम नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश भी करनी है और दुआ भी करनी है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब तक हम फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे हमारे नवाफिल कबूल नहीं होंगे। बस अगर मेरे सर पे ज़कात है कई साल से लागू और मैंने वो अदा नहीं की, तो मैं फिर सदका खैरात आम तौर पे नवाफिल की सूरत में कर भी लूँगी, तो जब तक मैं वो फ़राइज़ नहीं पूरे करूँगी बात नहीं बनेगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस वक़्त अमूमन पेपर जो आता था उसमें 8 में से 5 सवाल करने होते थे और उसमें से अमूमन पहला सवाल लाजमी होता था। यानी बाकी सवालों में से कोई भी आप चार कर लीजिए, पहला लाजमी है। आप अगर बाकियों में से कोई पूरे पांच भी कर ले लेकिन पहला सवाल ना करे तो उसको आगे नहीं लेके जाते थे। हमारे दीन में हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक जगह रखी है, जिसको आप और मैं फ़राइज़ कहते हैं ना, ये लाजिम है, ये कंपल्सरी क्वेश्चंस है, वी नीड टू फुलफिल देम। हम कंपल्सरी को छोड़कर ऑप्शनल पे जब जाएंगे तो बस दफ़ा फिर और ज़्यादा पकड़ होने का डर है। तो हम शौक़ से इबादत करें, हम तस्बीह नमाज अदा करें, हम तरावीह अदा करें, हम नवाफिल पढ़ें, बहुत ही बरकत की चीज़ है। लेकिन एक दफ़ा चेक कीजिए कि मेरे पर फ़र्ज़ तो नहीं है। पांच वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेना, अपने आप को दीन और ईमान और इस्लाम के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वट एवर यू विल डू इट विल बी एक्सेप्टेड। कोई किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना ले लेकिन सारी किताबें घर में ही मंगा कर पढ़ता रहे लिखता रहे, तो एंड ऑफ द डे उसको कोई मेडिकल की डिग्री मिलेगी? तो हमारे कल्चर में अमूमन नवाफिल का बहुत अहतमाम है। बाज़ वह पूरी पूरी रात जागना पसंद करते हैं किसी एक ख़ास रात के नाम पर, लेकिन हो सकता है सो जाएं और अगले दिन की फजर की नमाज अदा ना हो। तो हमें जिस चीज़ पे एक और मज़ीद गौर करना है वो क्या है कि हमारे सर पे कोई फ़र्ज ना हो। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ यह कि अकेले इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी साथ लेते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है 1172 कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इतिकाफ़ करते रहे। फिर इनके बाद आपके अज़वाजे मतहरात भी इतिकाफ़ करती रहीं। बल्कि बाज़ जगह तो ऐसा भी आता है कि आखिरी साल जो था उसमें आपने 20 दिन का इतिकाफ़ किया था, दो दफ़ा दौर किया था, तो फिर क्या पता चला कि घर वालों को साथ लेकर चले। देखिए, इज्तमाही इबादत आसान हो जाती है जब हमारे साथ हमारे प्यारे भी लगते हैं। रात के वक्त में इंसान थकन महसूस करता है, लेकिन जब सब मिल जाएं और घर का माहौल ऐसा बन जाए तो बहुत आसान है। और इस साल माशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया कि चूंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम फैमिली मेम्बर्स साथ ही रहते हैं, तो फिर एक किस्म की हारमनी और एक फ्रेंडशिप की कैफियत भी समझ आ गई कि जिसके बाद लोग एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय भी करेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, घर के बच्चों को महरूम ना कीजिए। अल्लाह ताला ने शायद ये मौका हमें, जो कहना चाहिए कि रेयर चांस या एक वंस अ वाइल्ड मौका जो दिया, वो इसीलिए दिया कि हम अल्लाह ताला से ये मदद मांगें कि हमारे बच्चों को हम अपने अमल से करके दिखाएं। अब जब आप पहले से तैयारी कर लें तो फिर इसके बाद एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है। पहली तो बात यह कि आप 10 रातें पूरी ही जाकें, क्योंकि बस जगह चांद देखने पे कुछ इश्यूज बनते हैं, और अगर क्या हुआ 10 कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी में एक ताक होगी, एक जुफ्त होगी। आज से ही अगर किसी पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में शुरू हो रही हैं, इसी तरह आप अपने अपने हिसाब से, इवन अगर एक रात गुजर भी चुकी है और आपको आज इस बात को सुनने का मौका मिल रहा है तो नियत कीजिए। इसके लिए क्या करें कि दिन में दोपहर का जो इन बिटवीन टाइम होता है इसमें थोड़ा सा कैलूला कर लीजिए। दिन में जब आप थोड़ा सा सो लेते हैं तो अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में पता चलता है कि इसकी वजह से हमें रात को जागना आसान लगेगा। फिर इसी तरह रात को खाना थोड़ा सा कम खाइए, यानी जिस रात जागना है इबादत करनी है तो आप इफ्तारी और डिनर लाइट लीजिए, ताकि फिर जागते रहने की वजह से खूब अच्छी भूख भी लगे, और उस दिन आप सहरी में फिर पराठे और अंडे और ऑमलेट जो आप खाना चाहें शौक से खाइए। तो इससे जिसम हल्का फुल्का रहेगा, इबादत में सहूलत होगी। फ्रूट्स ले सकते हैं आप, स्मूदी बना लीजिए, यानी रिफ्रेशिंग फूड लें। बहुत हैवी खाना खाने से भी इबादत नहीं होती, और बहुत भूखे होने से और कमज़ोरी से और बीपी लो हो रहा है, शुगर लेवल डाउन है, ये नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए कि इस रात को अल्लाह ताला ने इसमें लैलतुल कद्र कहा, यानी फी लैलतुल कद्र कहें या मा लैलतुल कद्र, और आगे देखे तो लैलतुल कद्र है। सवाल पैदा होता है कि इस रात को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? तो कदर लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में 3 मुख्तलिफ़ मानों में है, जिसको अगर आप देखें, पहली बात तो आप में सिंपल ले लें कदर की रात, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। किसी ने कहा कि लैलतुल कदर कब है, तो जवाब किसी ने बड़ा खूबसूरत दिया कि हर वो रात जिसकी तुम कदर पहचान लो वो कदर की रात है। अल्लाह ताला तो हर रात में आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाता है, जब आखिरी पहर शुरू होता है और पुकार लगाता है कि कोई बीमार है जो मुझसे सेहत ले, कोई है जो गुनाहगार है तौबा मांगे, और इसी तरह से आप जो मांगना चाहें अल्लाह से लीजिए। लेकिन इस रात के लिए चूँकि ख़ास तौर पर तनज़ुलुल मलाइकतु व रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम की बात की गई, तो यकीनन ये रात कदर वाली है। दूसरा, आप इसको कदर को लेंगे तंगी के मानों में, अरबी ज़ुबान में काफ दाल रा कदरा, इससे तंगी का मानी है। तंगी से मुराद है कि इस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान से ज़मीन तक जगह फरिश्तों से भरती है, और तंगी का एहसास होता है। आप इसको महसूस कीजिए। ज़ाहिर है कि जो रात इतनी प्यारी है और फरिश्ते आगे और फरिश्तों की कसरत से तंगी का एहसास है, इसीलिए फरमाया कि लैलतुल कदर की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उससे अगले दिन की जो सुबह होती है ना, उस दिन सूरज की रोशनी में किरणें नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे मलगजा सा है, क्लाउडी सी फीलिंग आती है। क्यों? कि अभी फरिश्ते वापस नहीं गए और सूरज की चमक पूरी तरह हम तक नहीं पहुंची। एक तीसरा बहुत ही खूबसूरत मानी है जिससे हमारे इंडो पाक कल्चर के काफ़ी साथी सही तरह आगाह नहीं है, तो ज़रा सी तवज्जो इसमें मज़ीद चाहिए होगी मुझे भी अपनी और आपको भी। और वो क्या है कि ये रात तकदीरों के फैसले करने वाली रात है। ये वो रात है जिसमें आपके पूरे अगले साल का प्लानर और अगले पूरे साल का जो सेटअप है वो अल्लाह ताला फरिश्तों को देते हैं। आप कहेंगे कि हम तो आज तक ये 15 शाबान की रात शबे बिरात कहते हैं या शबे बरात कहते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। तो हकीकत है कि हम भी जिस कल्चर में ग्रोन अप हुए, जिसमें बड़े हुए, हम भी यही करते थे और समझते थे। और आज भी याद है कि वो बचपन की मासूम सी यादें कि उस रात बैठकर सोचते ही रह जाते थे, पता नहीं अब्बू का पत्ता तो नहीं उतर गया, अम्मी का तो नहीं उतर गया। यानी उस उम्र में माँ बाप और भाई बहन ही तो सब कुछ लगते हैं। लेकिन जब कुरान खोला तो कुरान पाक में तीन मुकामात को अगर आप जमा कर लें, एक तो यही है, क्योंकि आप देखिए मिन कुल्ली अम्र का लफ्ज़ है, फरिश्ते इस रात में हर काम के लिए उतरते हैं। फिर इसी तरह से यही चीज़ आप ले लीजिए तो सूरत दुखान में अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की, और वहाँ भी इसी मजमून को पेश किया कि ये कुछ फैसलों की रात है। वो जो सूरत दुखान की आयतें ना, उसकी वजह से कुछ लोग इसको शब बरात के नाम पे शाबान के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अब दोनों में पता कैसे चले कि वो लैलतुल कदर है वहाँ तकदीर के फैसले हैं कि इधर? तो फिर इसका जवाब आपको सूरत अल बकरा की आयतें जो रमज़ान के रोज़े के तसव्वुर के बीच में, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, गालिबन 185 आयतें सूरत बकरा की। देखिए अब तीनों चीज़ों को आप लिखिए। इधर ये पता चल रहा है कि लैलतुल कदर में हर रात का फैसला हो रहा है, ठीक है, और ये भी पता है कि लैलतुल कदर रमज़ान की रातों में। सूरत दुखान से पता चल रहा है लैलतुल मुबारकतन, और उसमें भी हर चीज़ के फैसले होते हैं। तो अब पता क्या चला कि ये 15 शाबान की रात है या कोई इससे आगे पीछे की है? तो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान से पता चला कि कुरान तो रमज़ान में उतरा। तो क्या पता चला कि कुरान पाक के बास हिस्सों को समझने के लिए उसी के बास हिस्सों को समझना ज़रूरी है। और जो बात हदीस से बहुत वाज़ह तरह पता है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत से पता चलता है कि इस रात हमारे अगले पूरे साल के मामले दिए जाते हैं। अब इस शऊर से दुआ मांगिए, अल्लाह ताला इस आज से लेके अगले साल तक मेरे प्यारे, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, जिनको भी तूने दुनिया में किसी तकलीफ़ में अगर मुब्तला करना है तो उसको निकाल दे, किसी की मौत का फैसला कर दिया है तो तू उसको ज़िंदगी दे, उसकी उम्र को बढ़ा। क्योंकि हदीस में आता है कि दुआ के साथ ज़िंदगी भी बढ़ जाती है। तकदीर से लड़कर उसको पलटाने वाली चीज़ों में दुआ से ज़्यादा मुअसर कोई चीज़ नहीं है। तो आप सूरह दुखान के भी अगर इब्तदाई आयात को नोट करना चाहें, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने बेशक इसको उतारा। किसको उतारा? कुरान को उतारा। कॉमन थिंग क्या है देखिए दोनों में, सूरत दुखान की आयत में और सूरत कदर में, इन्ना अनज़लनाहु, और हु से सबको पता है कुरान की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इस कुरान को नाजिल किया, किस में किया? लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में। अब वहाँ बरकत वाली रात हम मान लेते हैं, कोई कबाहत नहीं है इसमें, कोई झगड़े की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ये इल्मी बात है, जिसको समझ आ गई ठीक है, नहीं आएगी तो इस फाइन। हम बहुत सारी बातों पे दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, हम इंशाल्लाह इस बात पे ट्रस्ट करेंगे। वहाँ क्या कहा गया था? फी लैलतिन मुबारकतिन, हाँ एक बरकत वाली रात थी वो। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम ही वॉर्न करने वाले हैं यानी हम डराने वाले हैं। आगे क्या था? फी हक युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, बेशक इसमें अलग किया जाता है, डिसाइड किए जाते हैं हर काम हिकमत के साथ। अब यहाँ क्या है? मिन कुल्ली अमरिन हकीम, और उधर क्या है? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फीहा मिन कुल्ली अमर। तो मेरा ख्याल है कि बात वाज़े हो रही है कि दोनों आयतों में क्लेम यही है कि कुरान बरकत अली रात में उतरा, और यहाँ उसको बरकत अली रात कहा गया, उसको कदर वाली रात कहा गया। तो इसका डिसीजन हो गया शहरु रमज़ान अल्लज़ी पे। तो क्या पता चला सारी बात का एंड अप क्या है? कि इस रात में अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी के मामलात को लेता है, तकदीरों के फैसले होते हैं। تو کیا کریں، خوب بھلائیاں مانگیے، پھر آپ دیکھیں کہ اس رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے، ضائع نہیں کرنا. اور عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کا نام نہیں ہے. عبادت کی تین بڑی قسمیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے ریچولز ہیں، جو کہ واقعی ہم نماز، روزہ اور اس طرح نوافل ادا کرنے سے، قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادت میں اطاعت بھی ہے، سبمیشن ہے، بندگی بھی ہے، غلامی بھی ہے. یعنی عبادت میں آپ دیکھیے کہ ریچولز بھی ہیں، سبمیشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ سلیوری کی فیلنگز بھی ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا کنا بدو، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بات کو بھی مانیں گے. تو لہٰذا عبادت کے لیے آپ مختلف قسم کی کیفیات کو نوٹ کر سکتے ہیں. خوب نیکیاں کمانے کی رات ہے، سوئیں گے بھی اگر رات کا کچھ حصہ، تو اس سوچ کے ساتھ آپ سو بھی سکتے ہیں کہ اللہ میں اس لیے رات کا کچھ حصہ بیچ کا سونے لگی ہوں تاکہ میں آخری حصے میں اٹھ کر مزید عبادت کروں. مومن کا سونا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا کام کرنا عبادت. آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر کے بزرگوں کے لیے، شوہر کے لیے سحری بناتے ہیں، پوری شرح صدر کے ساتھ بنائیے، کیونکہ آتے متام کھانا کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیں، ساتھ نفل نہیں پڑھ پا رہے اس وقت آپ استغفار کریں. اور سب سے خوبصورت چیز جو ہمارے نبی نے سکھائی اپنی پیاری زوجہ کو، وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی پیاری بیوی تھیں، دیکھیے گھر میں دو دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. چھوٹی سی عمر میں عائشہ، اس عمر کی بچیوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کتنی سمجھدار تھیں. پھر اسی طرح اولاد کی نعمت بھی نہیں تھی ابھی، تو اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے جواب دیا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر. لفظ العفو ہے اللہ کا نام. اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی سب لسنرز کو کہ ہمارا پچھلے سالوں میں ایک کورس جو صرف 3 دن میں ہم نے رمضان میں کیا تھا، اس کا نام ہی فاعف عنی ہے. اور اگر میں بھولوں نہ تو ایوری ڈے 2.5 آور تھے، یعنی ٹوٹل 7 آور سم تھنگ کی ریکارڈنگز تھیں. آپ ہر دو دو گھنٹے کو ڈیوائڈ کر کے اب سے لے کے رمضان کے اینڈ تک سننا چاہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس میں ہم نے 3 چیزیں کی تھیں. ایک تو اس کا انٹرو سیشن بہت ہے کہ یہ دعا کیا ہے. پہلی دفعہ لوگوں نے اس دعا کو اس طرح سمجھا تھا کہ جو ہمارے پاس اس کا فیڈ بیک تھا، کہ آج پتہ چلا کہ یہاں انا کا فون کیوں ہے، غفور کیوں نہیں ہے، اللہ انا کا فون تو حب الافوا کیوں ہے. کیونکہ عموماً تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ معافی کا غفور الرحیم کے ساتھ آتا ہے، مغفرت کا لفظ ہے، لیکن اتنا کامن لفظ چھوڑ کے اللہ نے الاف کیوں کہا؟ تو بہت ہی پیاری اس میں باتیں ہیں. صرف اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ بخش تو اللہ دے گا غفور میں بھی، لیکن اف کیا ہے کہ اس کے نشان بھی مٹا دے. جیسے اریزر کے ساتھ آپ پینسل سے کچھ لکھے کو مٹاتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے نشان رہ جاتے ہیں نا، اف اللہ کا وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہے کہ بالکل کلین کر دو، کہ سٹینز بھی باقی نہ رہے، ہمارے دوستوں کو بھی ہمارے وہ گناہ یاد نہ رہے، ہمارے گھر والوں کو بھی نہ پتہ لگے. تو یہ دعا مانگیے. دیکھیے اس ایک دعا میں وہ سب کچھ آ گیا جو حضرت عائشہ کی طلب تھی. یہ نہیں کہ عائشہ بیٹا مانگ لیجیے، عائشہ گھر مانگ لیجیے، وہ تو ہے ہی، لیکن مومن کی سب سے بڑی دولت ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کرتے. تو لہٰذا اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، کوئی گننے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص پروٹوکول کے ساتھ ایک گیٹ اپ میں آنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے گناہوں بھرا دل سامنے لائیے، شرمندگی کے، ندامت کے آنسو دل میں گزاریے اور تڑپ کے کہیے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، ایک دفعہ میرا نام اعمال صاف کر دے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو گندا نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ کہ اس رات میں کریں کیا، کہ جو عبادت کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد کے نام پر 8 رکعت، یعنی 3 وتر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹوٹل 11 رکعت پڑھتے تھے. وہی آپ دیکھیے کہ رمضان میں چونکہ اس وقت ہم مصروف ہوتے ہیں تو اس کو عشاء کی نماز سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ 11 ہیں. آپ کیا کریں، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، تراویوں کو لمبا کر لیتے تھے، یعنی اسی کا ایک نام قیام اللیل ہے، اسی کو آپ تراوی کا نام کہہ سکتے ہیں، اسی کو تہجد کہہ سکتے ہیں، لمبی کر لیجئے. رات کو عشاء کی نماز کے ابتدائی وقت میں 4 فرض جماعت سے پڑھیے، گھر والے پڑھیں، بچے بھی ہوں، میاں بھی ہوں، اور جس طرح بھی گھر کا ماحول اچھے سے اچھا بنائیے، سنتیں ادا کیجئے. 4 تراویح میں آپ ایک آدھا پارا پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، کچھ حصہ چھوڑ دیں، 6 پڑھ لیجئے، جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں کچھ تراویاں چھوڑ دیجئے بس. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کیجئے. آپ چونکہ یورپ میں اور خاص طور پہ ناروے میں تو راتیں بہت چھوٹی ہیں، 2-2.5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے رات، لیکن इवन पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में आप देखिए बहुत लंबी रातें होती हैं, तो फिर उसके लिए जितना भी थोड़ा बहुत बीच में सो सकें तो कोई हर्ज नहीं है। इब्तदाई वक्त में इबादत कर लें, बीच में 1 घंटा सवा सो जाइए, फिर दोबारा उठिए अपने सहरी के टाइम से 1 घंटा सवा घंटा पहले वुज़ू कीजिए। आप जो छोड़े हुए नफिल या तरावी या जो भी क़ियामुल लैल के नफिल थे कुरान पाक खोल कर पढ़ लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ज़ुबानी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, पूरा पढ़ लीजिए। आप पूरी इन 10 रातों में कुरान पाक पढ़ने के लिए हर रात के 3 पारे बांट लीजिए। इबादत वो कीजिए जिसमें दिल भी लगे। अल्लाह ताला सूरह तहा के शुरू में कहते हैं, मानजल नहाजल कुरान ली तश्का, हमने ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। तो इंजॉय कीजिए कुरान, उस वक्त तक पढ़ना चाहिए जब तक उसको इंजॉय कर रहे हैं, ये ना हो कि नींद के खुमार में कुछ गलत से गलत बात निकल जाए। बहरहाल जब आपको लगे कि अब आपको काम करना है, खाना बनाना है, उससे पहले फिर आप आखिरी वितर पढ़ लीजिए। कुरान का बेहतरीन हिस्सा वो है जब नफलों में पढ़ते हैं। सादा कुरान बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको खड़े होकर पढ़ना मुश्किल है, नफलों की नियत करके फिर कुर्सी पे बैठ भी सकते हैं, दोबारा फिर खड़े होकर रुकू कर लें। ये सिर्फ आपके अपने और आपके रब के बीच में है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने शबे कदर में ईमान और सवाब की नियत से क्याम किया इसके गुज़श्ता गुना माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर एक बात नोट कीजिएगा कि लैलतुल कदर में सिर्फ रातें ही नहीं दिन भी शामिल है। दिन में कुछ काम करेंगे, कुछ रातों में करेंगे, हाँ शान जो रात की है वो रात की है। फिर इसके लिए जिस्मानी, रूहानी और कल्बी तौर पे तैयार हों, गुसल कीजिए, साफ़ सुथरा कंफर्टेबल मौसम के मुताबिक लिबास पहनिए, क्योंकि हमारे कपड़े भी बहुत अहम होते हैं हमारे किसी भी काम के करने कराने में। एक और काम कर सकते हैं, आपके सदका खैरात दीजिए। 1 पाउंड देंगे तो आप देखिए कि अगर ज़र्ब लगा लीजिए उसको 1,000 रातों पे, और एक अमल वैसे रमज़ान में 70 और 70 से सुन्नत नफिल फ़र्ज, ये सब बातें हम सुन चुके हैं, शुरू से सुनते हैं, तो आपका 1 पाउंड हो सकता है 70,000 पाउंड में बदले, ये अल्लाह को बताए और आपको। तो जितना कर सके करें, बच्चों के हाथों से सदका दिलाइए। एक चीज़ जो हम नहीं कर पाते अमूमन, उसका भी जिक्र ज़रूर करूँगी, कि हम अल्लाह ताला के साथ तो इबादतें करते थकते नहीं हैं, लेकिन बंदों के साथ गिरें पड़ी हुई हैं, दिल में कीन है, सगे भाई हैं तो लड़े हुए हैं, ससुराल से ताल्लुका टूटे हुए हैं, मैके में जाने की इजाज़त नहीं, तो इबादत कबूल नहीं होती। कीने वाले दिल की इबादत कबूल नहीं होती। जो भाई या मुसलमान दूसरे से 3 दिन से जायद अपनी किसी जाती वजह या ग्रज की वजह से ना बोले और दूसरा कोशिश भी कर रहे और आप नहीं बोल रहे, तो भी इबादत आगे जाने में रुकावट बनेगी। तो दिलों को कीने से साफ कीजिए। जब अल्लाह से जो कह रहे हैं कि अल्लाह इन्ना कफ़ुवन तो हिब्बुल अफ़ाफ़ुन्नी, तो आप क्यों नहीं लोगों को माफ़ करते? क्या हम लोग अल्लाह से वही नहीं मांग रहे होते जो हम खुद नहीं देते? तो ये तो बच्चों वाली आदत होगी, ये बड़ों की आदत तो नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से आप देखिए कि घर की लाइट्स खोल सकते हैं, माहौल अच्छा बना दीजिए, सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया ना कीजिए, वो तो फिर भी इधर ही रहेंगे। बदल बदल के नेकियां करें, थोड़ा सा कुरान बैठ के पढ़ लें, दुआएं पढ़ सकते हैं। पूरी कुरान की दुआएं अगर आप खोल कर देखें तो 48 से 50 दुआएं हैं तकरीबन, कुछ लोग एक दुआ को दो कर देते हैं, यानी 48 के करीब दुआएं हैं। हमारे पास एक बुक के फ़ैनी करीब तरतीब से, यानी सूरह फातिहा, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका नकूना मिनल जाहिलीन, जो पहले पारे की दुआ है, फिर रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, तरतीब से चलती है। आप 3 3 पारों के एक एक दिन में याद करना भी चाहें तो अगले 10 दिनों में आप दुआएं याद कर सकते हैं, देख के तो आप रोज़ ही पढ़ सकते हैं। सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, रात को अल्लाह के नबी सूरत मुल्क और सूरत सजदा पढ़ते थे, आप ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में इसकी नियत कीजिए। और याद रखिए कि अकेले भी कुछ हिस्सा इबादत का रखिए और कुछ हिस्सा सबके साथ मिलकर भी कीजिए, फोकस अल्लाह की तरफ हो। और याद रखिए कि अगर आपके मेरे पास बहुत वक्त भी नहीं है ना, तो दिन का कोई 1 घंटा, कोई एक वक्त, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच का इतिकाफ की नियत कर लीजिए। मकसद खुशू है, मकसूद क्या है कि अल्लाह के साथ मेरा दिल जुड़े, क्योंकि अंबिया कराम भी नबुवत से पहले अल्लाह ताला के बहुत करीब महसूस करते थे। और इसी तरह दिखावे से बचिए, बस जब ख़वातीन अपनी बीमारी के दिनों में होती हैं तो बहुत मोरल डाउन होने लगता है, तो क्या किया जाए अगर ऐसे दिन हों? तो देखिए नमाज के अलावा आप हर काम कर सकते हैं, जिक्र कीजिए, अजकार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, इस रात की ये दुआ तो आप पढ़ ही सकते हैं। कुरान अगर पढ़ने को नहीं भी आपको शरह सदर, तो सुन तो सकते हैं अच्छे से कारी की आवाज़ में। आज से भी चूज़ कीजिए 3 3 पारे करके, दिन रात 24 घंटों में पूरे घर वालों को कहें कि बस उस वक्त अपने काम करते रहें लेकिन बोलना नहीं है। तो आप 1 पारा देखें तो 20 से 25 मिनट में भी, और 40 से 45 मिनट का एक पारा होता है श्लोक कारी की आवाज़ में। तो आप इन अगले दिनों में पूरा कुरान पाक घर वालों के साथ मिलके सुने, टीवी पे लगा लीजिए तो आवाज़ और भी अच्छी होगी। फिर इसी तरह आप कुरान की तफसीर सुन सकते हैं, दौरे कुरान तो आजकल चल रहा है माशाल्लाह हमारा, आप उससे फ़ायदा उठा लीजिए। पैगामे कुरान जो सिर्फ 45 मिनट की सीरीज़ है उससे फ़ायदा उठाएं, कुछ भी कीजिए लेकिन अल्लाह से कुर्ब महसूस करें। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं, कभी जिक्र किया, कभी तिलावत की, कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी कोई लेक्चर सुन सकते हैं इसी बारे में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जब इबादत मोड में आ जाएंगे तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फजर की नमाज के बाद बैठे रहिए अपनी जगह पे, थोड़ा सा वक्त होता है लेकिन उस वक्त नींद वैसे बहुत आती है, लेकिन यही इम्तिहान है। तो उस वक्त आप वहाँ बैठ कर अज़कार कीजिए, नमाज के बाद के सुबह की दुआएं पढ़ लीजिए और थोड़ा सा कुरान पढ़िए, क्योंकि फजर के वक्त का कुरान तो हाजिर किया जाता है। तो अल्लाह करे कि आप और मैं इन लोगों में शामिल हो जाएं और बेहतरीन तरीके से ये काम करें, और अल्लाह ताला हमें कोई अच्छी नीयत करने की तौफीक दे। एक एक नीयत रोज़ अच्छी कर लीजिए, अपनी एक बुराई पे नज़र कीजिए कि मैं ये नहीं करूँगी, अब ये छोड़नी है। कोई छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बड़े काम करने भी आसान हो जाएंगे। ज़ुबान को ज़िक्र से तार रखिए, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह अकबर, कभी दुरूद शरीफ पढ़िए, कभी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अलअज़ीम पढ़िए, देखिएगा आपके पास करोड़ों की नेकियां जमा हो जाएंगी। और अगर आप एक देखिए करें तो 83 ईयर 4 मंथ्स बनते हैं एक रात में। तो अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से काम करने की तौफीक दे। कोई आपने अगर अच्छा सा कुरान का कोर्स ज्वाइन करना है आप इन दिनों में उसको साइन अप कर सकते हैं ताकि आप उसका अजर भी बाद में पाएं। हाँ एक जुमला ना भूलिए, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये गम को दूर करता है, दुख को दूर करता है। हम लोग रमज़ान के बाद इंशाल्लाह एक शॉर्ट कोर्स ऑफर कर रहे हैं डिप्रेशन A to Z, क्योंकि बाज़ लोग लॉकडाउन में रहने की वजह से डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ हमारी एक सामने आ रही है, डोंट बी सैड, तो उसमें हम डिप्रेशन से निकलने की बहुत सारी टिप्स और दुआएं सीखेंगे माशाल्लाह। हर साल एक कुरान का सफ़र हम शुरू करते हैं सबीलुल जन्ना के नाम पे। इस साल एक इंग्लिश में हो रहा है, एक उर्दू में हो रहा है, दोनों के लिंक्स ऑन हो चुके हैं nurulquran.com/ करके। कहने का मतलब यह है कि कोई नेकी जाने ना दे, रोज़ की एक हदीस पढ़ लीजिए, बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपसे मुझे राज़ी हो जाए। कसरत से जन्नत मांगिए, जहन्नुम से पनाह मांगे, अल्लामा हासिब ना हिसाब वहीं यसीरा की दुआ करें। जन्नत में जाने के लिए वो कलेमात जो जन्नत में दरख्त उगाते हैं उनकी ख्वाहिश करें, उनके बारे में सोचें। वैसे 10 बार सूरत इखलास पढ़ना अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देता है। हज़रत माज की रिवायत है मुस्नद अहमद में, रब इब्नि ली इंदा का बैत तनफिल जन्ना, हज़रत आसिया की दुआ थी जिस पे अल्लाह ने उनका जन्नत में घर बना दिया था। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।